मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत आज हम लोग सामाजिक न्याय पर कुछ बातें करेंगे और इस पर क्यों हम लोग बात करने जा रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं और साथ ही कल जो छूट गया है उसे भी पूरा कर लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने मॉरिशस का नाम सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संयुक्त रूप से सामाजिक आवासीय परियोजना का उद्घाटन किया वर्चुअल तरीके से। मैं थोड़ी सी बात मॉरिशस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जनरली होता क्या है कि जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो कि मान लीजिए कि आप प्रवासी भारतीयों के बारे में लिख रहे हैं या आप जो भारतीय हैं विदेशों में कितना अच्छा कर रहे हैं, किस तरीके से वो सफलता अर्जित कर रहे हैं, मान लीजिए कि इस तरह का कोई प्रश्न पूछ लिया गया है और आप लिख रहे हैं तो आप सामान्य तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी है फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप उसमें कुछ देशों के नाम भी डाल दें तो आपका जो उत्तर है वो थोड़ा सा ज्यादा चमक वाला बन जाएगा? तो मॉरिशस का नाम एक ऐसा ही नाम है। बस थोड़ी सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मॉरिशस है बेसिकली वहां भारतीय मूल के लोग बहुत ज्यादा हैं। सन 1840-50 के आसपास अंग्रेजों को जब मजदूरों की, आपको मालूम है कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो दूसरे जो स्थान थे वहां मजदूर नहीं थे लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ खेती बाड़ी की जाए, लोग वहां थे नहीं, तो उन्होंने भारत से बहुत से लोगों को अलग अलग देशों में भेजा। उसी में से एक है मॉरिशस। दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे बहुत से लोग गए थे और इसीलिए जब गांधी जी वहां गए तो उन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया क्योंकि देखा उन्होंने कि कैसे एशियाई जो लोग हैं उनकी बहुत बुरी हालत अंग्रेजों ने कर रखी है। तो मॉरिशस गए, अब चले तो गए, वो एग्रीमेंट के तहत जाते थे कि भाई 2-3 साल तक करेंगे और इसके बाद वापस आएंगे, लेकिन जब चले गए तो चले गए, वापस कौन उनको भेजता है, तो वो वहीं बस गए। तो मॉरिशस इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है भारत के लिए। हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं और मुझे वहां जाने का अवसर भी मिला है। आप वहां जाएंगे तो वहां के घरों में आपको बकायदे जो हमारा तिरंगा होता है वो आपको फहराता हुआ मिल जाएगा और बकायदे वहां के आंगन में आपको तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा दोहराते हुए वहां के लोग मिल जाएंगे। तो मॉरिशस इस तरह का देश है, तो बस आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिए। भारत वहां के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब जैसे सामाजिक आवासीय परियोजना, ये बकायदे भारत ने उन्हें उनके लिए बनाया है, तो बस थोड़ी सी मॉरिशस की जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का, किसानों के लिए खुले पिटारे। देखिए, खासकर मैं अब ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से इस बीच में मेरे पास मेल आए थे कि सर जो आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स होते हैं, जरा सा अगर आप बताएं कि इसका हम लोग कैसे उपयोग करें तो हमें बहुत लाभ मिल सकेगा, तो इसीलिए मैं फिलहाल इस तरह की स्थिति को लेकर चल रहा हूं। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में पार्टियां खूब बढ़ चढ़ करके वायदे कर रही हैं। आप देखिए कि साहब हम बिजली फ्री कर देंगे, बिजली तो फ्री कर ही दी है लोगों ने, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम स्मार्टफोन दे देंगे, हम साइकिल दे देंगे, हम सभी चीजों के लिए MSP निर्धारित कर देंगे, इस तरह की खूब सारी बातें की जा रही हैं। ये जो एडिटोरियल कमेंट है वो उसी के ऊपर है। इसमें जो बात कही गई है वो ये कि जब इस तरह के झूठे वायदे किए जाते हैं तो नीचे तबके के जो लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं और ये वायदे कभी पूरे होते नहीं क्योंकि किए ही नहीं जा सकते। तो अब क्या किया जाए? देखिए, होता क्या है फ्रेंड्स कि आप इसके बारे में बिल्कुल निराश मत होइए कि जब एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है किसके बारे में अपने विचार बताइए या इस समस्या का क्या समाधान है, तो अभी आपकी उतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने दिमाग से कुछ बता सके या तुरंत सोच सके। हो सकता है कि 1-2 पॉइंट आपके दिमाग में आ भी जाए लेकिन ठोस निदान आप नहीं बता सकते, तो इसीलिए एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह पढ़े जाते हैं कि हमारा दिमाग इसके लायक बन सके और जब भी वहां आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में कुछ नए थॉट मिलते हैं तो आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे वायदों के बारे में यहां बहुत अच्छे 1-2 बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली बात तो यह है कि सरकार जो ये सब, सरकार नहीं कहना चाहिए, जो राजनीतिक दल है इस तरह के वायदे करती हैं तो इनके बारे में कानून बनाया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि इन्होंने जो वायदे किए हैं उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब आप फ्री में देने की बात करते हैं कि हम साइकिल दे देंगे, हम मोबाइल दे देंगे, तो इसके बारे में भी कानून ये होनी चाहिए कि ये जो पैसा है ये आप सरकारी खजाने से नहीं देंगे, आपकी राजनीतिक पार्टी का अपना फंड होता है, आप उसमें से दीजिए, क्योंकि सरकारी खजाने से अगर आप दे रहे हैं तो फिर तो लोगों का पैसा है वो आप बांट रहे हैं। और फिर अंत में कहा कि इस तरह के आपको झूठे वायदे करने की जरूरत नहीं है, आप तीन क्षेत्रों में काम कर लीजिए, लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह के वायदों की। और उन्होंने आखिरी की दो लाइनों में जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह निष्कर्ष बहुत से प्रश्नों के उत्तर में आपके काम आएगा। वो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लोगों को शिक्षित कर दीजिए, अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा दीजिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए कि उनका बजट खराब ना हो, और उन्हें रोजगार दे दीजिए, बस बात खत्म हो गई। फिर आपको ये दुनिया भर के लोक लुभावने वायदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो इतने बड़े बड़े लेख होते हैं या जो एडिटोरियल कमेंट्स होते हैं, इनसे बस आपको कुछ पॉइंट्स अपने लिए नोट कर लेना है, बस उतना ही सफिशियंट होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी डिसीजंस आ रहे हैं। एक डिसीजन राजस्थान के हाई कोर्ट ने फिर दिया है कि जो युवती लड़कियां हैं विवाह होकर के अपने ससुराल चली जाती हैं, तो अब उनका मूल प्रमाण पत्र क्या हो, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नहीं, जहां वो रह रही थी यानी कि जो माता पिता के पास वो रही है, पली बढ़ी है, तो वही उनका मूल निवास है, और अगर कोई प्रमाण पत्र मांगता है तो उसे ही उनका मूल निवास मान करके प्रमाण पत्र दिया जाए, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मूल निवास बदल गया है। फ्रेंड्स, कल हम लोग विधायिका से निलंबन के बारे में बातें कर रहे थे, और मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपको एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन सबको पढ़ें, देखें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। कोर्ट ने जो बात कही है तीन चार, और जो एडिटोरियल कमेंट्स में निकल करके आए हैं, यहां जल्दी से मैं आपको दोहरा देता हूं। पहली बात तो कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी चीज सत्र से परे नहीं होती है। सत्र से परे नहीं होती कहने का मतलब है कि जो एक सत्र है, जो संसद का या आप यूं कह लीजिए विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो आप निलंबन भी करेंगे तो केवल उतने ही पीरियड के लिए करेंगे। और इसमें एक पॉइंट आप और भी कह सकते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया भी है, कि क्यों निलंबन किया गया। निलंबित इसलिए किया गया कि वो डिस्टर्ब कर रहे थे सेशन को, तो ठीक है, उसका पर्पज यही है ना कि सेशन ठीक ठाक चले, तो आप उस सत्र तक निलंबित कर दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप साल भर के लिए उनका निलंबन कर दें। कोर्ट ने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही वो ये कहा है कि आप एक साल के लिए अगर निलंबन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एमएलए हैं या एमपी हैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आपने एक साल के लिए उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया, तो ये उन्हीं को सजा नहीं दे रहे बल्कि उसके संसदीय और जो विधानसभा का क्षेत्र है उसको भी आप सजा दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे यहां तो बकायदे नियम है, ये कानून है कि जो कोई भी अगर पार्लियामेंट भंग हो जाती है या विधानसभा भंग हो जाती है या किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि जो एमएलए हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया किसी वजह से, डेथ हो गई, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी है, और आप इनका एक साल के लिए निलंबन कर दे रहे हैं, तो क्या आप ये गलत नहीं कर रहे हैं? तो इस लिहाज से भी जो निलंबन है वो गलत है। और फिर एक पॉइंट और भी है फ्रेंड्स, कि जो नियम होते हैं इसमें, खासकर जो हाउस चलते हैं तो वो उनके अपने इंटरनल नियम होते हैं, बिजनेस रूल्स होते हैं, उस बिजनेस रूल्स में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसी का निलंबन उस सत्र के लिए ही किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ये सब नोट कर लिए होंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, सामाजिक न्याय जरूरी। अब समझ गए होंगे कि इस विषय को मैंने क्यों लिया, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहकर बहुत समय से आरक्षण को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें शायद थोड़े समय के लिए विराम लग जाए, क्योंकि जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र की आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरी में हो चाहे मेडिकल में हो, तब हमेशा दो वर्ग में पूरी की पूरी बहस बढ़ जाती है। एक वह जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, दूसरा वह जो आरक्षण के लाभ के कारण नौकरी से वंचित हो रहे हैं या दूसरी चीजों से जिनको नुकसान पहुंच रहा है। तो सीधी सी बात है कि दोनों अपने अपने पक्षों की बात करते हैं और ऐसा सामान्यतया होता भी है। खासकर चूंकि प्रशासन में मैं रहा हूं और इस तरह की बहसें होती रहती हैं, तो जनरली जो युवा हैं, खासकर जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो एक तर्क देते हैं, और उनका तर्क ये रहता है कि अब बताइए कि उसके नंबर उससे ज़्यादा थे, इसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिली और कम नंबर वाले को नौकरी मिल गई, ये खूब कहा जाता है। और बकायदे पिछले साल तो मैंने देखा कि कई इस तरह की खबरें भी गूगल पर आईं कि मेरे मार्क्स इतने थे लेकिन उसके मार्क्स मेरे मार्क्स से 50 कम थे लेकिन उसको मिल गई नौकरी और मुझे नहीं मिली, इस तरह की खबरें आती रही। ठीक है, जब आप अपने ढंग से सोचते हैं चीजों को तो इसी नजरिए से आप देखेंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कह दिया कि जो आरक्षण है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कही है और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, कई साल तक यह वाक्य काम आएगा, कि जो आरक्षण है वो मेरिट के अगेंस्ट नहीं है, यह सामाजिक न्याय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह सामाजिक न्याय का सवाल है। और जो मैंने अंक की बात कही तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अगर किसी के अंक ज्यादा हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनकी योग्यता का एकदम प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा नहीं है। अंक अधिक हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उसके आधार पर आप कहें कि वह इस कार्य के लिए सर्वोत्तम भी होगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस पर एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, मुझे लगता है कि इस पर एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आने चाहिए, तब हम लोग इस पर बातें करेंगे। आज के अखबारों में ये खबर बहुत ही प्रोमिनेंटली छपी है और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस खबर की जो क्लिपिंग्स है ओरिजिनली, जो आप सब अपने अपने पास रख लें, ये बहुत ही काम की, आप यूं कह लीजिए कि एक घटना है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन है। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है स्वीटी कुमारी छपरा बिहार से, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे पास कुछ मेल आए थे, मैं उनमें से दो का नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगा। उसमें से एक थे सोनल वानखड़े, आपने मुझे कुछ भेजा था लिख करके कि मैंने इस तरीके से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की, एक घटना को उठा करके आपने जानना चाहा था कि उसकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चल रही हैं, इसी तरीके से आप सोचने की आदत डालिए। और इसी तरह से अंकित मुंबई से जो हैं, आपने मेरे पास कुछ जानकारियां भेजी थी अपने मूल्यांकन के लिए, वह भी बिल्कुल सही लाइन पर मुझे मिली हैं, आप उसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को दो दिनों के लिए विराम देना चाहूँगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।